ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है पुरुषार्थ में आत्मिक स्थिति का महत्व। वैसे तो आजकल बाबा के मिलन की विधि भी बदल गई है। पहले तो बाबा यहाँ साकार में गुलजार दादी के तन में आकर के मिलते थे, लेकिन अब बाबा कहते हैं मुझे मिलने के लिए क्या करो, अव्यक्त बनो, क्योंकि अव्यक्त मिलन वही मना सकता है जो खुद अव्यक्त है, अर्थात आत्मिक स्थिति में है। तो इसलिए सबसे पहले अगर आत्मिक स्थिति का महत्व है तो अगर हमें प्रभु मिलन करना है, प्रभु मिलन करना है तो आत्मिक स्थिति में रहने की आवश्यकता है। आत्मिक स्थिति से ही हम प्रभु मिलन का आनंद ले सकते हैं। और जितनी हमारी आत्मिक स्थिति रहेगी, आत्मिक स्थिति से हमारे जीवन में सारे गुण और शक्ति आएगी। आत्मिक स्थिति हमारा ये पहला लेसन है, पहला भी है और अंत का भी है। अगर हमें कर्मातीत बनना है, बाप समान बनना है, बाप समान उसको कहेंगे जो अशरीरी स्थिति में आत्मिक स्थिति में रहता है, क्योंकि ये आत्मिक स्थिति से ही हमारे अंदर बाबा के समान गुण आएंगे। बाबा तो शांति का सागर है, अगर हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे शांत स्वरूप की अनुभूति कर पाएंगे। बाबा क्षमा का सागर है, हम भी क्षमा कर सकेंगे। कब? जब आत्मिक स्थिति में है। इतना ही नहीं, बाबा अपकारी पर भी उपकार करता है, तो वो बाबा का गुण हमारे अंदर तब आएगा जब हम आत्मिक स्थिति में हैं। देहबान वाला कभी अपकारी पर उपकार नहीं कर सकता, वो क्षमा भी नहीं कर सकता, वो दया भी नहीं कर सकता। उसके मन में तूफान चलेगा, ये क्यों किया उसने, मेरे साथ क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ। इसलिए अगर बाप के समान बनना है आत्मिक स्थिति चाहिए। जितना हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, हमारी देखते हुए भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। हम इस संसार में देख रहे हैं, लेकिन उन चीजों का प्रभाव हमारे मन और बुद्धि पर नहीं पड़ेगा। साक्षी, जिसको बाबा कहते हैं साक्षी अवस्था, जितना हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं उतना रात को सोए हैं तो भी योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहे हैं तो भी योग लगा रहेगा, कर्म कर रहे हैं योग लगा रहेगा। आज कईयों को लगता है मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। क्यों टाइम नहीं मिलता? क्योंकि आत्मिक स्थिति में नहीं है, इसीलिए उसको लग रहा है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आत्मिक स्थिति में हम है, हम निरंतर योगी हैं, कर्म योगी बन सकते हैं। आत्मिक स्थिति में रहने से हमारे वाणी में बल आएगा, हमारे दृष्टि में बल आएगा, इतना ही नहीं हमारे संकल्प में बल आएगा, जो सोचेंगे वो होगा। सत्युग में पूरा कारोबार संकल्प शक्ति से है, क्योंकि वहां आत्मिक स्थिति है। आज कई कहते हम सोचते हैं लेकिन होता ही नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आत्मिक स्थिति की कमी है। देहबान वाला सोचता है वो नहीं होता, उसे विपरीत होगा। इसलिए आत्मिक स्थिति से जो सोचेंगे वो होगा। आत्मिक स्थिति में रहने से हम वाइब्रेशन फैला सकेंगे चारों ओर, वाइब्रेशन की सेवा जिसको बाबा कहते सकास दो। जैसे सूरज निकल आया तो सूरज से ऑटोमेटिकली कितनी सारी सेवा हो रहे हैं, कितने लोग फायदा हो कर रहे हैं। इसी तरह जिसकी आत्मिक स्थिति है वो सूर्य के समान, उसके द्वारा कितनी सारी सेवाएं होती रहेगी, माया के जर्म्स नष्ट होते रहेंगे, वाइब्रेशन बनता जाएगा, सकास मिलता जाएगा। इसलिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास। इतना ही नहीं, जो आत्मिक स्थिति में रहता है उसको अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है, अति इंद्रिय सुख। और जो अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करता है उसको इस संसार की कोई भी चीजें आकर्षित नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, आत्मिक स्थिति के सुख से कोई भी विकार उसको वश नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए। चाहे आत्मिक स्थिति से हम सुख का अनुभव करें, जो आत्मिक स्थिति से नहीं करता तो संसार की चीजों से कोई विकारों के वश होकर के सुख लेने का कोशिश करता है। अगर हम आत्मिक स्थिति में हैं, अतीन्द्रिय सुख मिलता है, तो आत्मा विकारों के वश नहीं होगी। आत्मिक स्थिति में रहने से हम अपने जीवन के अंदर कितने भी कड़े संस्कार हैं उस संस्कारों का परिवर्तन कर सकेंगे। आत्मिक स्थिति में रहने वाला समस्याओं का समाधान करता है, वो जीवन में आने वाली कई कारण कई बातें उसका समाधान करता है। इसलिए इस स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। इसलिए बाबा शायद हर मुरली में, रोज की जो मुरली हम साकार में सुनते हैं, हर मुरली में इस अभ्यास के तरफ बाबा कितना ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे आत्मा समझो और फिर मुझे याद करो, क्योंकि ये मूल लेसन है। अगर मूल हमें सत्यु के संस्कार और सत्यु की संस्कृति को अपनाना है, अनुभव करना है, इस आत्मिक स्वरूप के अभ्यास से होगा। आत्मिक स्वरूप से ही हम देवी देवताओं के संस्कार अभी अनुभव कर सकते हैं, वहां की संस्कृति की अनुभूति कर सकते हैं। जिन्होंने आत्मिक स्वरूप का अनुभव किए हैं उसको सत्युग में जाने के लिए भी अच्छा नहीं लगेगा, वो सत्युग का सुख भी उसके सामने फीका है। इसलिए सत्युग से भी हमारा पहला जन्म है ब्राह्मण जन्म, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन का सत्युग से भी अच्छा है वो अनुभव वही कर सकता है जिसकी स्थिति आत्मिक है। अगर देह बहन है तो उसको ब्राह्मण जीवन में समस्या ही समस्या दिखाई पड़ेगी, एक समस्या निकालो, दूसरी दूसरी निकालो, तीसरी। इतना ही नहीं, आत्मिक स्थिति में रहने वालों को किसी के भी दोष नजर नहीं आते, सभी निर्दोष अनुभव होता है, कोई दोषी नहीं है, सारे निर्दोष हैं। इसलिए आत्मिक स्थिति में रहने वाला सदा उसके चेहरे पर असली मुस्कान होगी, असली मुस्कान। इसलिए देवी देवताओं सदा चेहरे में खुशी होती है, क्यों? यहां से बहुत काल का उन्होंने आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया है। सत्यों के देवी देवता इसलिए खुश नहीं, हम सोने के महलों में हैं, हमारे पास पुष्पक विमान है, इसलिए खुश नहीं है, उनकी आत्मिक स्थिति है। और आत्मिक स्थिति होने के नाते वहां कोई भी आपस में एक दूसरे का शरीर भी आकर्षित नहीं होता है, इतना ही नहीं वो वस्तु वैभव में भी आकर्षित नहीं है, जैसे कोई जिलेबी खाता है और उसको मुरमुरा दो, वो कहेगा नहीं नहीं इतनी अच्छी चीज खाई अब मुझे मुरमुरा नहीं चाहिए। इसी तरह जो आत्मिक स्थिति का अनुभव करता है सारे संसार की सारा सुख फीका है। आत्मिक स्थिति में रहने वाला वो जो सुख है पूरा कल्प में जो कुछ हमने देखा है जो कुछ खाया पिए हैं उन सबसे न्यारा सुख है। इसलिए उस सुख की अगर अनुभूति करनी है हमें इस लेसन को पक्का करना है। वास्तव में ये जो टोटल ज्ञान का विस्तार किस लिए है, आत्मिक स्थिति बनाने के लिए है। जैसे बीज बोने के बाद बीच में विस्तार होता है, बहुत सारे ब्रांचेस बहुत सारा कुछ आता है, लास्ट में वही बीज अंत में प्रकट होता है। इसी तरह हमने भी ज्ञान में विस्तार में जाकर के अब हमारी वो बीज की स्थिति चाहिए। अंतिम समय विनाश के चारों ओर के दृश्य को देखने के लिए हमारी आत्मिक स्थिति चाहिए। आत्मिक स्थिति वाला ही विनाश के दृश्य को देख करके अचल अडोल रह सकता है। इतना ही नहीं उस समय अनेक रोएंगे, वो रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकता है, अनेक को धैर्य दे सकता है। इसलिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास हमें करना है। और अगर इस स्थिति में हम रहते हैं तो सहज हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दैवी गुण अनेक प्रकार की दैवी शक्ति आती है। शक्तियों को अलग कोई अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। आज कई कहते हैं मुझे सहन ही नहीं होता, मेरे अंदर ये शक्ति नहीं है। अगर नहीं है हमारा देहबान नहीं खत्म हुआ। जैसे बीज जब बोते हैं उसी बीज को अनेक प्रकार के फल लगते हैं। इसी तरह आत्मिक स्थिति का ये बीज है, अगर ये जब हम खूब इसका अभ्यास करते हैं तो सहज हमारे पुरुषार्थ रूपी जीवन में दैवी गुण और दैवी शक्ति रूपी फल लगेंगे। अगर मेरे जीवन में सहन शक्ति नहीं है, मेरे जीवन में गुण नहीं है, इसका मतलब मैंने जो आत्मा का अभ्यास है वो ठीक नहीं किया है। इसलिए आत्मा के अभ्यास से गुण और शक्तियां अपने आप आएगी। इसलिए ये लेसन हमें पक्का करना है। इस रावण के राज्य में रहते हैं, रावण के वारों से बचना है। इसलिए आत्मिक स्थिति की तिली, जैसे सीता को रावण ने चुरा कर लेके गया, लेकिन जब वो नजदीक आता था वो सीता अपनी तिली जला करके रख देती थी। ये तिली क्या है? आत्मिक स्थिति की तिली सदा जगी रहे। जिसकी आत्मिक स्थिति की तिली है रावण के राज्य में रहते हुए भी रावण से बच करके रहेंगे। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है फिर दूसरा काटता है, रावण नहीं मरता। तो विभीषण आकर के उसके कान में दो तीन बातें सुनाता है, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाऊं। इसी तरह हम भी रावण के साथ युद्ध कर रहे हैं, कोई 10 साल से कर रहे हैं, कोई 20 साल से कर रहे हैं, कोई 40-50 साल से कर रहे हैं, लेकिन रावण नहीं मर रहे हैं। क्यों? हम क्या करें, कभी काम का गला काट देते हैं, कभी क्रोध छोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी दूसरा संस्कार छोड़ते हैं, वो दोबारा जुड़ जाते हैं। क्यों? देह भान है नाभि। जब तक उसके नाभि में तीर नहीं लगाएंगे रावण के गले नहीं कटेंगे। सबसे बड़ा विकार है देह का भान। हमें काम विकार पर जीत प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करना है, क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करना है, पुरुषार्थ करना है आत्मिक स्थिति का। यह है पुरुषार्थ, पुरुष मतलब आत्मा, रथ मतलब शरीर, ये शरीर से स्वयं को अलग समझना, अशरीरी बनना, ये है पुरुषार्थ। कहते ना आजकल मेरा पुरुषार्थ ढीला चल रहा है, मतलब मैं आजकल देह भान में हूँ, आत्मिक स्थिति में नहीं हूँ, इसलिए मेरे जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अंधकार को बाहर निकालने का कोशिश नहीं करते, अगर अंधकार को निकालना है लाइट जला दो, अंधकार अपने आप भाग जाएगा। इसी तरह हमारे जीवन की समस्या अंधकार है, अगर उसको भगाना है यह आत्मिक स्थिति का अभ्यास। ब्रह्मा बाबा ने दो बातों का विशेष पुरुषार्थ किया था। ब्रह्मा बाबा ने एक तो आत्मा का लेसन बहुत पक्का किया, बाबा ने जगह जगह पर उसके लिए लिखा, डायरी में लिखा, बार बार पाठ पक्का किया, मैं आत्मा हूँ, जयशोद आत्मा, ये आत्मा आत्मा। हम अपने दिल पर हाथ रख करके पूछे, इस मूल लेसन के ऊपर सारा दिन हम कितना अटेंशन रखते हैं, और इसको छोड़ करके बाकी सब कुछ कर रहे हैं, सफलता नहीं मिलेगी। कख सिखाई नहीं और बेबेड़ की किताब पढ़ना जा रहे, कैसे जाएगा वो? आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं किया, सेवाओं में जा रहे हैं, धारणा करने की कोशिश कर रहे हैं, योग करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो सकता। इसलिए हमारे ब्रह्मा कुमारी का कख है आत्मिक स्थिति। जिन्होंने इस लेसन को पक्का किया वो जीवन में सफलता प्राप्त करता है, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाता है। इसलिए अभी भी हमारे पास टाइम है, आगे चल करके ये टाइम हम नहीं कर पाएंगे अभ्यास, आगे चल करके अनेक प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, बातें आएंगी, आत्मिक स्थिति में नहीं रह पाएंगे। अभी से हमें इसका अभ्यास करना है। जैसे अंधेरे में कोई एक दीपक जल रहे हैं, ऑटोमेटिकली सबका ध्यान उसके तरफ जाता है, इसी तरह इस कलयुग के अंधेरे में जितना हमारा आत्मिक स्थिति का दीपक जलता रहेगा, सबका ध्यान हमारे तरफ अपने आप आता जाएगा। इसीलिए बाबा भी कहता ना, मैं सच्ची दिवाली देखना चाहता हूँ। कौन सी दिवाली? सबके दीपक जगे हुए देखना चाहता हूँ, यही सच्ची दिवाली। लेकिन आजकल दुनिया में क्या करते हैं, सच्ची दिवाली मनाने के लिए अभी 15 दिन तो सफाई करेंगे, 8-10 दिन सफाई करेंगे, तो दिवाली के दिन क्या करेंगे? फिर दीपक जगाएंगे। अब दीपक जलाएंगे तो लक्ष्मी आएगी कैसी? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, और उल्लू को तो लाइट में दिखता ही नहीं है, तो उल्लू कैसा आएगा लक्ष्मी को लेके? तो वास्तव में लक्ष्मी घर घर में तब आएगी जब हमारा दीपक जलेगा। जिसका दीपक बुझा हुआ है उसके घर में लक्ष्मी कैसे आएगी? अर्थात वो सत्युग में जा नहीं सकता। इसलिए हमें इस लेसन की मेहनत करनी है। जैसे कोई बिल्डिंग बनाई और बिल्डिंग का फाउंडेशन रेत पर है, तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी? थोड़ा भूकंप आया, थोड़ा सा कुछ आंधी तूफान आई, गिर जाएगी। इसी तरह जिसने ये आत्मा का लेसन पक्का नहीं किए हैं, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो असफलता मिलेगी। क्यों? आत्मा का फाउंडेशन पक्का नहीं किया। इसलिए हमारा इस ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ का फाउंडेशन है आत्मिक स्थिति। इसका पुरुषार्थ में बहुत महत्व है। आत्मिक स्थिति विकारों पर जीत प्राप्त करने का ब्रह्मास्त्र है। अगर आपको कोई ज्ञान, कोई पॉइंट्स काम नहीं करती, बस 2-4 दिन इसी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करो, आप मायाजीत बन सकते हैं। भूत कहाँ रहते हैं? जिस घर में लाइट नहीं रहती है वहां भूत रहते हैं। पहले गांव में बहुत भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम निशान खत्म हो गया, क्योंकि घर गांव गांव में लाइट हो गई। इसी तरह विकार रूपी भूत भी वही रहते हैं जहां देह भान है, आत्मा की लाइट नहीं है। इसलिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है। वास्तव में बाबा परमधाम से क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? हमें आत्म अभिमानी बनाने के लिए आए हैं। सत्ययुग कब आएगा कई इंतजार कर रहे हैं, और सत्य अभी तो 82 साल चल रहे हैं। बाबा ने तो कहा था संगम कितना साल का है, गिनती कर रहे हैं, लेकिन चेक करो क्या मैं आत्मिक स्थिति में हूं। इसलिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास रहना है, और जितनी जिसकी आत्मा की ओरा दूर तक फैलता है उतना वो एरिया का राजा बन सकता है। आपकी आत्मा की लाइट अगर विश्व तक पहुंचती है तो आप विश्व के महाराजन बन सकेंगे। अगर आपकी आत्मा की लाइट केवल आपके देश तक पहुंचती है तो छोटे से एरिया का राजा बनेंगे। आत्मिक स्थिति के आधार से, ओरे के आधार से हमारा पद होगा सत्ययुग का। अपने ओरे को बढ़ाना है। दादी प्रकाशमणि यहां रहती थी लेकिन दादी की लाइट पूरा विश्व तक फैलती थी। तो अपनी एक होता है झूरो का बल्ब, कोई कोई तो आजकल तो दिवाली में लगाते हैं, वो बुझता ही चलता है, बुझता ही चलता है शो के लिए। कोई कोई होता है झूरो का बल्ब, कोई कोई होता है 40 का, 60 का, 100 का। तो चेक करो मेरा बल्ब कितना है, कितना वोल्टेज का है। तो आत्मिक स्थिति का अभ्यास की महिमा तो अपरंपार है, लेकिन उस आत्मिक स्वरूप का हम अनुभव कैसे करें? उसका अनुभव करने के लिए कुछ बातें आपको सुनाता हूं, क्योंकि इसी आत्मिक स्थिति में रहने से ही हम बाबा का मिलन कर सकेंगे। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, कहता है भाई साहब अगर कोई आग के पास जाता है तो क्या अनुभव होता है? गर्मी का अनुभव होगा। अगर कोई बर्फ के पास जाता है तो क्या अनुभव होता है? ठंडी का अनुभव होगा। उसके लिए कोई कमेंट्री करने की कोई जरूरत नहीं। और कहता है अगर बाबा सर्वशक्तिवान है, कोई बाबा के नजदीक जाकर के कोई बैठेगा तो क्या अनुभव होना चाहिए? बाबा की शक्तियों का अनुभव होना चाहिए। लेकिन कहता है मैं कुछ साल पहले बाबा मिलन में आया था, और कहता है मैंने बहनों को बोल करके जैसा ही वैसा जुगाड़ करके बिल्कुल सोफे पर जगह लिया था, क्योंकि बाबा तो सोफे से बहुत नजदीक है, इसीलिए बहुत नजदीक जगह लिया। लेकिन 4 घंटा कहा कि बाबा आया था, मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। कारण क्या? तो हमने उसको बताया कि अगर कोई बड़ा सा चुंबक है, उस चुंबक के चारों ओर में लोहे के टुकड़े डालेंगे तो क्या हो जाएगा? तुरंत आकर्षित करेंगे। इसका मतलब चुंबक बहुत अच्छे हैं। अगर कुछ लोहे के टुकड़ों को एक बड़े से कपड़े के थान के अंदर लपेट करके डालेंगे, वो हिलेंगे भी नहीं, इसका मतलब चुंबक खराब है? चुंबक तो अच्छे हैं। लोहे के टुकड़ों को कपड़े के अंदर थान के अंदर लपेट करके डाला है। इसी तरह बाबा सर्वशक्तिवान है, बाबा के साथ की अनुभूति वही कर सकता है जो आत्मिक स्थिति में। देह भान के कपड़े के अंदर लपेट करके कोई बैठेगा, कोई अनुभव नहीं होगा। इसीलिए मधुवन में यहां जो आने के नियम क्या है, जो एक साल सेंटर पर जाता है, रेगुलर क्लास करता है, अमृत वाला करता है, पवित्रता की धारणा करता है, खान पान की शुद्धि करता है, उसको ही मधुवन में एक साल के बाद लाते हैं। तो एक साल के बाद आने के बाद थोड़ा तो अनुभव होगा, क्योंकि एक साल में रेगुलर मुरली सुनने से, अमृत वाला करने से, श्रीमद प्रमाण चलने से आत्मिक स्थिति बनती है। तो प्रभु मिलन अगर करना है आत्मिक स्थिति चाहिए, अन्यथा फिर यहां कई लोग आते हैं और यहां आकर के देह भान में होकर के यहां की कोई निगेटिव बातें लेके चले जाएंगे। यहां से मधुवन की भी निगेटिव बातें दिखती है उनको, क्यों? देह का भान है। इसलिए हमें आत्मिक स्थिति में रहना है, यहां की सब अच्छा ही दिखाई पड़ेगी आपको, कोई भी निगेटिव बातें दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन ये आत्मा का अनुभव हम कैसे करें, उसके लिए पांच छह बातें आपको सुनाता हूं। सबसे पहली बात है, अगर आत्मिक स्थिति का अनुभव करना है उसके लिए जो बाबा ने ज्ञान का विस्तार सुनाया है, उस ज्ञान के विस्तार के आधार से योग के बल के द्वारा हमारे जीवन में सारा दिन जो छोटी छोटी समस्या आती है, प्रॉब्लम आता है, उसका समाधान खुद करना है। जो ज्ञान की गहराई में जाता है, योग का अभ्यास करता है, जो सारा दिन समस्याओं का समाधान करता है, वही आत्मिक स्वरूप में टिक सकता है। इसलिए मुझे लगता है पिछले सीजन की जितने भी 10-12 मुरली चली थी, बाबा ने पूरी मुरलियों की थीम थी बच्चे समस्याओं का समाधान करो, क्योंकि जो समस्याओं का समाधान करने की कला सीखता है वही अंत में बाप समान बन सकता है, अशरीरी बन सकता है, अव्यक्त स्थिति की अनुभूति कर सकता है, फरिश्ता बन सकता है। अगर समस्याओं की समाधान करने की कला ही नहीं आई, इसका मतलब ज्ञान और योग मेरा कच्चा है। ये विस्तार जो बाबा ने कर्मों की गुह्य गति का विस्तार जो हुआ अच्छा, ये विस्तार ड्रामा की बातें ये सब क्यों सुनाई, ये इसीलिए सुनाई ताकि हम कोई भी समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि जो समस्याओं का समाधान करता है उसका मन हल्का रहता है, उसका मन चुप रहता है। जो समस्या का चिंतन करता है, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, उसका मन डिस्टर्ब होता है। और जिसका मन डिस्टर्ब है, बुद्धि डिस्टर्ब है, वो सोल कॉन्शियस में आत्मिक स्वरूप में कैसा टिक सकता है। इसलिए अगर आत्मिक स्थिति में रहना है, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, ये ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे सब कुछ ठीक हो रहे हैं, तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं, ड्रामा रिपीट हो रहा है। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, उसने ऐसा किया, वो ऐसा हो रहे हैं, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप रहता है, जो हल्का बनता है, समस्याओं का समाधान करता है, वही आत्मिक स्थिति में रह सकता है। इसलिए ज्ञान और योग के आधार से जो बाबा ने इतना विस्तार दिए हैं, हमें कोई क्वेश्चन नहीं करना। अब क्वेश्चन करना अर्थात दलदल में फंसना, क्वेश्चन करना अर्थात अपना टाइम वेस्ट करना, क्योंकि हमें जाना अब वाणी से परे, यहां की बातों को लेकर के हम बाह्य मुखी अगर बनेंगे, वो आत्मिक स्थिति का अभ्यास कैसे कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान और योग के द्वारा, कर्मों की गुह्य गति के द्वारा हमें अपने मन को चुप रखना है। कई कहते नहीं, कैसे चुप रहे, मैं इसके रास्ते में कभी गया नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये क्वेश्चन आते हैं। ये ज्ञानी होने के बाद भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। टाली कभी एक हाथ से नहीं बचती, टाली के लिए कितना चाहिए, दो हाथ चाहिए। अगर कोई मेरे साथ ऐसा वैसा कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था, भले ही जन्म में नहीं किया था, लेकिन कोई ना कोई जन्म में जरूर किया था। तब तो वो मेरे घर में है, मेरा पड़ोसी है, मेरे रिश्तेदारी में है, आपके घर के, आपके ऑफिस के, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेने के लिए। अगर आपका और उसका दोनों का पिछला जन्म दिखाई जाए, आपने उसके साथ क्या क्या किया था, तो आप सिर झुकाएंगे, अच्छा मैंने भी ऐसा किया था। इसलिए बाबा ने कर्मों की गुह्य की गति क्यों बताएं? ये कर्म क्षेत्र है, इस कर्म क्षेत्र में जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम, ये मेरे ही कोई जन्मों में किए हुए कर्मों का परिणाम है, इसके लिए कोई व्यक्ति दोषी नहीं, कोई परिस्थिति दोषी नहीं। मन को चुप, किसी को सुनाने से, खुद चिंतन करने से क्या परिवर्तन होगा? इसलिए समस्याओं का समाधान खुद करना, और जो कुछ हो रहे हैं मेरे साथ उसमें भी कल्याण ही है। भले निगेटिव घटना हो रहे हैं उसमें भी कल्याण है। आज तक की सारी निगेटिव घटना ने मेरे को यहां तक लाया, और अभी भी ब्राह्मण बने हुआ निगेटिव घटना आएगी वो भी मेरा कल्याण ही करेगी। मेरा अकल्याण करने वाली कोई घटना ही नहीं है, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है, परिस्थितियां कल्याणकारी है। इसको लेकर के अपने मन को चुप रखना, और जिन्होंने इस ज्ञान की गहराई में जाकर के योग के आधार से अपने मन को चुप किया वही आत्मिक स्वरूप में टिक सकता है। इसीलिए बाबा की रोज की मुरलियां चलती है, किसीलिए ये रोज की मुरली चलते हैं, हमें समस्याओं का समाधान कारणों का निवारण करने के लिए। इतना सारा ज्ञान का विस्तार है तो भी ये ऐसा होता है, ये होता है, क्यों होता है, अगर करते रहेंगे तो फिर आत्मिक स्वरूप में नहीं टिक सकते। इसलिए अगर आत्मिक स्थिति का अनुभव करना है ज्ञान और योग के द्वारा हमें समस्याओं का समाधान करना है, कारणों का निवारण करना है, जीवन में आने वाली निगेटिव बात को क्या बनाना है, पॉजिटिव। अगर किसी ने मेरा मुझे गाली भी दी उसको पॉजिटिव लो, गाली नहीं दी मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो यहां गाली देगा वही क्या करेगा, दोपहर में रोज गुलाब का फूल डाल के पूजा करेगा। किसी ने आपका परचिंतन किया तो यहां जो संगम में आपका परचिंतन करेंगे दोपहर में आपके ही मंदिर के सामने आकर के आपका कीर्तन भजन गाएंगे, तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए। जिस दिन ऐसा कुछ किया सोचने के बजाय बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा पूजा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यह समस्याओं का समाधान। और जो ऐसा समझ करके सारा दिन हल्का रहता है, लाइट रहता है, वही आत्मिक स्थिति में रह सकता है। इसलिए समस्याओं का समाधान। दूसरी बात है, अगर आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है, अनुभूति करनी है, निरहंकारी होकर के रहना है। जितना जो निरहंकारी रहेगा उतना आत्मिक स्वरूप में टिक सकता है। अगर थोड़ा भी अभिमान आया कर्तापन का, सेवाओं का, सफलता का, वो आत्मिक स्वरूप में नहीं टिक सकता। इसलिए निरहंकारी, जितना निरहंकारी उतना निराकारी। वास्तव में हमारे ब्राह्मण जीवन में हमको जो भी बाबा ने कला दी है, कोई विशेषता दी है, कोई गुण दिए है, ये हमारा भाग्य बनाने के लिए बाबा ने दिए है, हमारा कुछ भी नहीं है। मैंने तो खुद, मैं अपने खुद के जीवन से मैंने खुद देखा। वैसे तो मेरा अपना लाइफ स्टोरी बहुत वंडरफुल है। मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में रहता था, 11 साल तक स्कूल भी नहीं गया था। 11 साल के बाद स्कूल में गया, टीचर ने कहा कि पहले क्यों नहीं आए, हमने कहा सर मुझे पता नहीं, कहा कि कोई बात नहीं कल से आओ। तो एक ही रूम थी छोटी सी, 7 कक्षा इकट्ठी बैठती थी। पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया और कहा कि पहले को सुनाएगी तो भी सुन लेना, दूसरे को। रोज जब जाना शुरू किया घर वालों ने मना किया, कहा कि अपने पैसा ने नहीं जाना। हमने कहा पैसे नहीं मांगेगे, बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे जाना तो भले जाओ। एक साल के बाद 6वीं में, 7वीं में, 7वीं की बोर्ड की परीक्षा थी तो टीचर ने स्कूल में आने के लिए मना किया, कहा कि तुम्हारे पास डायरी पेन नहीं है, तुम कल से नहीं आओ। घर में तो मना किया, स्कूल भी नहीं छोड़नी है, चोरी भी नहीं करनी है। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था और पुरानी डायरी को पानी से धुलाई करके फिर धूप में सुखा करके फिर लिखता था, ऐसी करके पढ़ाई कर रहा था। एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का एक किताब मिला और उस किताब की कुछ बातें पढ़ी, मुझे अच्छी लगी। मैंने और एक पत्र लिखा वहां, मुझे और किताबें चाहिए। तो वहां से मुझे पत्र आया, आप 10 रुपए भेजो उसके बारे में किताबें देंगे। मेरे पास 10 रुपए था ही नहीं, मैंने कुएं चला करके पानी बेचा, 2 पैसा, 3 पैसा, 6 महीना तक, और उससे मुझे करस्पोंडेंट की कोर्स की किताब आई। उसके बाद 10वीं पूरी हो गई, मैं आईटीआई का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गया था, वहीं ब्रह्मा कुमारी का सेंटर था, गीता भाषा थी, वहां जाना शुरू किया। तो मैं जब जाता था गांव से आया था डरता था दूसरी जगह है तो लास्ट में दो चार लोग पांच छह लोग आते थे गीता भाषा में तो मैं भी जाकर के पीछे बैठता था। कभी कभी वहां की सेंटर की बहने कभी आती थी वो मेरे को भी देखती थी, मैं फटावा कुर्ता पहन करके लास्ट में बैठता था, कुछ बोलता भी नहीं था किसी से। तो मेरे को कभी बहने बोलती थी बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है पता नहीं सत्युग में आएगा नहीं, क्योंकि मैं किसी को ज्ञान सुनाता नहीं कुछ नहीं। लेकिन जिस दिन मैं गीता भाषा में पहुंचा था उसी दिन पूरी मुरली आत्मा के ऊपर थी, बच्चे आत्मा समझो आत्मा आत्मा ऐसे मुरली पहली बार सुनी थी मैंने। तो मैं बाहर गया और अपने हाथ पर वो लिख करके रखा, अभी भी शायद लिखा पड़ा है मेरा, वो लिख करके रख दिया मैं आत्मा हूं। और इस आत्मा के लेसन के ऊपर बहुत मेहनत की। उसके बाद आईटीआई पूरा हुआ, फिर मधुबन में आया, सेवा का चांस मिला, सेवा करते करते दिल्ली में भी वही कुछ समय तक गुलजार दादी के पास रहा, वहां से यहाँ आया, यहाँ भी किचन में सेवा करता हूँ। ये सेवा करते करते हमने कुछ स्कूलों में सेवा करना शुरू किया, करते करते कुछ जेलों में सेवा किया, करते करते आज तक लगभग 9000 स्कूलों में जाकर के बाबा का संदेश दिया होगा, 9000 स्कूलों में। इतना ही नहीं, करीबन 800-900 जेल में जाकर के, जहां मैं खुद पुलिस वालों से डरता था ज्ञान में आया था तब, और आज बाबा ने इतनी सारी सेवा कराई। तो कभी कभी हम लोग अभी भी सेंटर पर जाता हूं तो कभी कभी बहने बहुत सम्मान करती हैं, बहुत कुछ ये करते हैं, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं ये सम्मान हमारा नहीं होता है, क्योंकि हम तो समर्पित का बैच पहना हुआ है, मधुबन निवासी है, ये तो वास्तव में मधुबन निवासी है इसीलिए सम्मान होता है। ये नहीं सोचते कि ये बहुत अच्छा, मैंने बहुत अच्छी क्लास के पॉइंट सुनाई इसीलिए बहनों ने सम्मान किया, बहुत अच्छे मुझे क्लास के इसीलिए यज्ञ के लिए बहुत पैसा दिया, ये हमारे लिए नहीं दे रहे, किसको दे रहे? बाबा को। मैंने कहा बहुत सुंदर एक आर्टिकल लिखा था अभी भी मराठी मासिक में, उसमें अच्छी सी एक स्टोरी लिखी थी। एक व्यक्ति ने एक मकान बनाया नया, जब मकान बनाया तो नया तो पुराना सब सामान शिफ्ट करना था, जब सामान शिफ्ट करना था उसको लगता है कि इतना सारा सामान मुझे शिफ्ट करना है अब कैसे लेके जाऊं, तो उसने एक अपना खुद का गधा पाला था, तो गधे के ऊपर रख करके सारा सामान शिफ्ट किया, लास्ट में एक मूर्ति बची थी, अब सोचता ये कैसे लेके जाऊं, लास्ट में उसके ऊपर ही रख दिया, वो कपड़ा ढक दिया और गधे पर रख करके लेके गया। अब गधा चलते चलते उसके ऊपर का कपड़ा हट गया, अब जैसे कपड़ा हट गया तो मूर्ति को देकर के लोग नमस्ते करना शुरू किया, अब गधे को क्या लगता है नमस्ते किसको कर रहे, मुझे कर रहे, वास्तव में लोग उसको नमस्ते नहीं कर रहे थे, किसको कर रहे थे? मूर्ति को। इसी तरह वास्तव में हम तो कुछ नहीं है, हमारे साथ में बाबा है, बाबा हमारे से कार्य कराता है, बाबा सेवा कराता है, लेकिन कई बार हम जब करते तो लगता वाह मैं बहुत अच्छा किया, अगर ये मैंपन आया अभिमान आया वो आत्मिक स्वरूप में नहीं टिक सकता। इसीलिए बाबा, मैं तो खुद देखता हूं बाबा ने मुझे अपना इतना अच्छा लौकिक में भी नाम दिया है, नाम भी अपना दे दिया, भगवान भाई बना दिया, कितना वंडरफुल। अगर मैं तो कहूँ कि वाह मैं बहुत अच्छा क्लास करा तो मुझे एसी में चलना है फ्लाइट में, नहीं मैं तो अभी भी स्लीपर में जाता हूँ सिंपल, मैं ही सोचता भगवान भाई तुम जब आए थे तुम कुछ नहीं जानते थे, ये सब बाबा को धन्यवाद दो तुमको सेवा में यूज कर रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, इसी तरह अपने आप को समझाता हूँ। तो सचमुच ये निरहंकारी बनने से हम आत्मिक स्वरूप में टिक सकते हैं। जो अपनी महिमा स्वीकार करता है, अगर कोई मेरी ग्लानी करता है तो मुझे टेंशन में आएगा, तो मुझे तो मुझे ग्लानी करने वाले लोग बहुत पसंद है, अगर मेरी कोई ग्लानी करता है मैं रोज उसके पास जाकर के सुनता हूँ मेरे को क्या क्या बोलते, कोई महिमा करने वालों से भाग जाता हूँ कभी उसको मिलता भी नहीं, क्योंकि ग्लानी करते करते लोगों ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, अगर महिमा करते तो मैं यहाँ सेवा नहीं कर पाता, ये है निरहंकारी। तो ऐसे जितना हम निरहंकारी रहेंगे उतना हम आत्मिक स्वरूप में टिक सकते हैं। तीसरी बात है आत्मिक स्वरूप में रहना है, जो हमारे बाबा के चार सब्जेक्ट दिए हैं, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी में चार सब्जेक्ट है, कौन से? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। जो ये चार सब्जेक्ट का बैलेंस करता है वो आत्मिक स्थिति में रहता है। ये चार सब्जेक्ट बाबा ने आत्मिक स्थिति बनाने के लिए हैं। जो चार सब्जेक्ट परफेक्ट रोज की दिनचर्या में अच्छी तरह करता है वो सहज सोल कॉन्शियस बनता है। ब्राह्मण जीवन हमारा स्टूडेंट लाइफ है, विद्यार्थी जीवन। फरिश्ता हमारी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी है। देवता वही बनेंगे जिसके पास डिग्री है, लेकिन ये डिग्री किसको मिलेगी? जो आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करते हैं। आत्मिक स्वरूप वाले सदा हल्के रहते हैं। जो हल्का है उसको क्या कहेंगे? फरिश्ता। इसलिए फरिश्ता बनना ही आत्मिक स्वरूप का अभ्यास। और ये आत्मिक स्वरूप बनाने के लिए ये चार सब्जेक्ट का बैलेंस चाहिए, चारों सब्जेक्ट का बैलेंस चाहिए। ज्ञान, कई कहते हम तो बहुत ज्ञान सुना। अगर ज्ञान सुना है, स्थिति क्या चाहिए? आत्मिक स्थिति। अगर मेरी आत्मिक स्थिति नहीं बनती, इसका मतलब ज्ञान केवल मेरा सुनने तक है, आचरण में नहीं है। ज्ञान के पास, ज्ञान के जिसके पास अथाह पॉइंट होंगे, वो पॉइंट स्वरूप में टिक सकता है। इसलिए जिसके पास ज्ञान के अथाह पॉइंट है वो पॉइंट स्वरूप में रहेगा। इसलिए ज्ञान के सब्जेक्ट के गहराई में जाने वाला सोल कॉन्शियस। कई कहते हैं हम योग रोज करते हैं। अगर मैं रोज योग करता हूं तो स्थिति क्या चाहिए? आत्मिक स्थिति चाहिए। अगर आत्मिक स्थिति नहीं है, इसका मतलब योग आपका केवल शरीर बैठा था, मन बुद्धि नहीं बैठी थी। जिसका यथार्थ योग है वो आत्मिक स्वरूप में रहता है। नहीं तो भक्ति मार्ग में यही किया, माला जप रहे, राम राम राम, देखना भाई बिल्ली दूध ने पर राम राम राम। अब यहां भी बैठे हैं, मन एक तरफ है, बुद्धि एक तरफ है। जो यथार्थ योग करता है वो सोल कॉन्शियस। अगर मेरी आत्मिक स्थिति नहीं है, इसका मतलब मैंने यथार्थ योग नहीं किया। जरूर मेरा मन कहीं भटका है, बुद्धि कहीं भटकी है। इसलिए विधि पूर्वक योग लगाना। कई कहते हम पवित्रता की धारणा किए हैं, हम बाहर का भोजन भी नहीं खाते हैं, बिल्कुल सारी धारणाएं। अगर धारणा करने के बाद भी सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं है, इसका मतलब वो धारणा केवल, भले बाहर का भोजन नहीं खाते लेकिन वो बातें करते खा रहे हैं, पर चिंतन करके खा रहे हैं। इसलिए जिसका धारणाएं पक्की होगी, भले अमृत वाले उठे हैं लेकिन उठ करके नींद करते हुए योग किया, भले मुरली सुनी लेकिन पहले आधा घंटा योग नहीं किया। हर कर्म जिसका विधि पूर्वक है, धारणा युक्त है, वो सोल कॉन्शियस स्थिति में रहता है। कई कहते हमने सेवाएं बहुत की, सेवाएं करने के बाद अगर सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं है, इसका मतलब वो सेवा नाम मान शान के लिए है। वास्तव में सेवा का सब्जेक्ट हमें खुश रहने के लिए, दुआएं मिलने के लिए बाबा ने दिया है। लेकिन सेवा करने के बाद सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं, वो सेवा कोई ठीक नहीं है। उस सेवा में जरूर मैपन है, नाम मान शान है। इसलिए चार सब्जेक्ट जिसके परफेक्ट है वो आत्मिक स्वरूप में रहेगा। कितनी बातें बताई? पहली बताई ज्ञान और योग के द्वारा समस्याओं का समाधान करने की कला। दूसरी बात बताई निरहंकारी होकर के रहना। तीसरा बताया चार सब्जेक्ट में पक्का करना। चौथी बात है अगर हमें आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करना है, अनुभव करना है, सवेरे सवेरे तीन चीजों में परफेक्ट बनना, सहज आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति बनेगी। तीन चीजें, एक तो अमृत वेला का योग, दूसरा क्लास के पहले आधा घंटे का योग, और तीसरा मुरली। ये तीन चीजें ब्राह्मणों के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व की है। और जो ये तीन चीजों में परफेक्ट रहता है वो सहज आत्मिक स्थिति में रहता है। अमृत वेला का योग, क्लास के पहले आधा घंटे का योग, क्योंकि क्लास के पहले योग करता है उसको मुरली समझ में आएगी, मुरली से उसकी नशा चढ़ेगी। और साथ में मुरली भी क्लास में आकर के बैठना, विधि से मुरली सुनना, क्योंकि आजकल की मुरली सुनने के भी कई प्रकार हैं। पीस ऑफ माइंड जो टीवी चलते हैं उसके द्वारा कई सुनेंगे, कई फेसबुक में, व्हाट्सएप में कई, लेकिन असली विधि है क्लास में आकर के आधा घंटा योग करना और फिर बाद में सम्मुख सुनना। वो भले सुनना है आपको, ये मना नहीं है, वो दोबारा रिवाइज करना है, दोबारा पॉइंट रिपीट करना है, उसके लिए भले आप फेसबुक में सुनो, कहीं पढ़ो, कोई बात नहीं। लेकिन सवेरे सवेरे जो ये तीन चीजें एक्यूरेट करता है उसका मनोबल बढ़ता है, वो सहज सोल कॉन्शियस में रह सकता है। लेकिन आजकल ब्राह्मण इन तीन चीजों में ढीले बनते जा रहे हैं। अमृत वेला के ऊपर अटेंशन, इसलिए तीन चीजों को परफेक्ट। लास्ट की बातें, अगर आत्मिक स्वरूप का अनुभव करना है, पांचवी बातें, सारा दिन जो इंद्रियों को ईश्वरीय नियम और मर्यादा प्रमाण चलाता है वही सोल कॉन्शियस रह सकता है। जिसको सारा दिन इंद्रियां चलाती हैं वो देह भान में रहेगा, वो सोल कॉन्शियस नहीं रहेगा, प्रजा हो गई सर्वस्व, राजा को दबा दिया। लेकिन नहीं, हमें इंद्रियों से योग्य काम करा कर लेना, ऐसा नहीं कि इंद्रियां हमको चलाएं। पानी अगर नौका पानी के ऊपर चलती है, पार कराती है, नौका के अंदर अगर पानी आता है वो डुबा देता है, इसी तरह जो इंद्रियों को चलाता वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनकर चलना। सारा दिन ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपना रोज दरबार लगाया और दरबार लगा करके चेक किया कौन सी कर्मेंद्रिया मुझे धोखा देती है, उनसे बातें की। लेकिन हम कहते ना, गीत है, कहावत है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सर बाजी टके सर काजा, नगरी का राजा सोया है, नगरी में जो चाहे हो रहा है, आंधा पीस रहे हैं और कुत्ता बैठ करके खा रहे हैं, आंधे को लगता है तो मैंने बहुत पीसा है। इसी तरह हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और हमारी कर्मेंद्रिया गंवा रहे हैं, थोड़ा सा योग लगाया, थोड़ी सी सेवा की, कान ने वेरत सुन लिया, आंखों ने वेरत देख लिया, मुख ने वेरत बोल लिया, खाता खाली, सोल कॉन्शियस कैसे बनेंगे। चले कई कई तो आज बिके भाई बहनों को घर में लौकिक में घर में देखने के बाद क्या बोलते हैं, ये मुसीबत आ गई, मुसीबत समझते। क्यों? उन्होंने अपने अंदर परिवर्तन नहीं किया। परिवर्तन किया है, ब्याज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, लेकिन अंदर का परिवर्तन, अंदर के परिवर्तन का आधार है स्वराज्य अधिकारी बनना, हर इंद्रियों को अनुशासन में रखना, और इसी परिवर्तन के आधार से हम भविष्य की राजा मिलने वाली है। अभी शुरू में गीत बज रहा था एक, भ्रुकुटी आसन पर हम आत्मा शासन करे राज्य करे, और जिन्होंने ये स्वराज्य अधिकारी स्थिति बनाई उसके लिए आत्मिक स्थिति में रहना बड़ा सहज है। आत्मा चेयर पर तब बैठेगी जब हर इंद्रिया एक्यूरेट अपनी कार्य करेगी। आंखों ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद फिर गई, वो चेयर पर नहीं बैठ सकता। और संगमी की चेयर कौन सी है, भ्रुकुटी आसन पर। जो संगमी में इस आसन पर बैठता है सत्युग में उसको आसन मिलेगा। इतना ही नहीं, जो सारा दिन भ्रुकुटी आसन पर बैठता है उसको ही बाबा का तखत मिलता है, और जिसको बाबा का तखत मिलता है उसको भविष्य का आसन मिलता है। बाबा को वही बच्चे पसंद आए जो इंद्रियों पर शासन करने वाले हैं। लोग भी पसंद करेंगे, कहेंगे बहन बहुत अच्छी है, ये माता बहुत अच्छी है। अच्छी है मतलब क्या, उसका इंद्रियों पर शासन है। इसीलिए मुझे इंद्रियां ना चलाएं, इसलिए रोज रात को हम दूसरों को दोषी बनाते हैं, इसके कारण ऐसा हुआ। वास्तव में हमारी आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है, कान हमारी रक्षक है, आंखें हमारी रक्षक है, लेकिन यही रक्षक आज भक्षक बने हैं। आज हम नीचे क्यों उतरे, हमारी राजाई क्यों गई, उसके लिए कोई भी दोषी नहीं है। दोषी है तो कर्म इंद्रियां। इसीलिए रोज अपना दरबार लगा करके चेक करो, हे मेरे कान तुमने आज सारा दिन क्या सुना, हे मेरे आंखें तुमने क्या देखा, हे मेरे मुख तुमने क्या किया, पांव ने कहां लेके गए, समझो मुख ने पर चिंतन किया, आदि बदवा किसको मिली, पांव को, क्योंकि पांव वहां उठा के लेके गया। इसीलिए हर इंद्रिय अपनी एक्यूरेट ड्यूटी करे और तब जाकर के खुशी रहेगी, तब मन खाएगा नहीं, संकल्प व्यर्थ नहीं चलेंगे और तब स्वराज्य अधिकारी वाला ही आत्मिक स्वरूप में रह सकता है, उसको खुशी रहेगी, हर तब शांति रहेगी। तब शांति रहेगी जब सभी इंद्रियां अपने शासन प्रमाण है, खुशी में है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनकर के हर इंद्रियों पर शासन करने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि ये सब चीजें जो मैंने पांच बातें आपको सुनाई, ये पांच बात तो अगर ठीक है हमारे संकल्प कम चलेंगे। वास्तव में आत्मिक स्थिति में वही रह सकता है जिसके संकल्प कम चलते हैं, जिसके संकल्प पॉजिटिव समर्थ चलते हैं। इसलिए समर्थ सदा सोचना, व्यर्थों से मुक्त बनना, वो सदा निश्चिंत रहता है, बेफिक्र बादशाह बनकर के रहता है। और जो आत्मिक स्थिति में रहता है सारा दिन, वो आत्मिक स्थिति से हमारे शरीर में व्यवस्थ फैलते हैं, हमारा शरीर का भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए अशरीरी बनना, विधेयी बनना, दो हमारे लक्ष्य है, एक है संगम का लक्ष्य, दूसरा है सत्युग का लक्ष्य। संगम का लक्ष्य अशरीरी बनना, विधेयी बनना, बिंद्रु बनना, बिजरू बनना। जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचेगा, सत्युग लक्ष्य उसकी परछाई है, उसको मिली जाएगी। सत्युग में नहीं सोचोगे क्या बनेंगे क्या करेंगे, केवल हमें आज का दिन अशरीर बनना है, विधेयी बनना है, आत्मिक स्थिति में रहना है। यह है पुरुषार्थ। इसलिए आत्मिक स्थिति का हमें फाउंडेशन पक्का करना है। उसके लिए रोज अपने शरीर की गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोने के लिए कहां जाऊं? बाबा के पास। सदा आत्मा हो करके दूसरों को आत्मा के रूप में देखना। शरीर में सबसे सुंदर चीज है आत्मा। अगर आत्मा चली गई तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं। इसलिए इस आत्मा के लेसन को पक्का करने से हमारी ब्राह्मण जीवन की सारी समस्याएं खत्म होगी, हम योगी बन सकेंगे और बहुत अच्छा ऊंचा पद प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए अभी भी हमारे पास टाइम है, तो इस फाउंडेशन को पक्का करना, इसे हम निर्विघ्न बन सकेंगे। और संगम युग में जो निर्विघ्न रहता है पूरा कलप उसका रिकॉर्डिंग बनता है। इसलिए हमें इस आत्मिक स्थिति के अभ्यास के स्वरूप में रहने का अभ्यास करना है और इससे हमारा सो परिवर्तन होगा। और जिसने अपना परिवर्तन किया है उसको ये दुनिया भी परिवर्तन हो गई वो दिखाई पड़ेगी। ये है पुरुषार्थ। और इसे हमारी जो वर्तमान समय जो बाबा का मिलन है, अव्यक्त मिलन, उस मिलन का भी बहुत आनंद ले सकेंगे। इसलिए अभी भी आप लोग अभी बाबा मिलन का 17 तारीख पड़े हैं, 4-5 दिन, तो अभी से आप ये ढूंढ लगा दो, मैं आत्मा हूं, बस आत्मा के स्वरूप में रहो, आत्मा को देखो। यहाँ की कोई भी आपको कुछ ऐसी वैसी बातें वो दिखाई नहीं पड़ेगी, अपना टाइम भी सफल हो जाएगा। तो आत्मा का यहाँ जब तक सेवा करते चलते फिरते आत्मा के स्वरूप में हो करके रहेंगे तो ये अभ्यास आपको घर में भी जाने के बाद बड़ा काम आएगा। तो ये है पुरुषार्थ। ठीक है, ओम शांति।
जहां।